مال میں مل جائے تو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے. جس مال میں مل جائے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور اس نے زکوٰۃ میں لے لی تو اس کا دیگر مال بھی ہلاکت میں آ گیا. ہلاکت کی بھی دو شکلیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ مال ضائع ہو گیا اور دوسری صورت یہ کہ اس مال میں برکت نہیں رہتی. برکت نہیں رہتی اس سے میں نفع نہیں رہتا, اس میں نفع نہیں رہتا, اس میں فائدہ نہیں رہتا, اس میں خیر نہیں رہتی, اس میں بھلائی نہیں رہتی. وہ ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ایسی جگہ ضائع ہوتا ہے کہ جہاں جان بھی لگتی ہے, وقت بھی لگتا ہے, پیسہ بھی لگتا ہے. تو فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ مل گئی وہ مال ہلاکت میں آ گیا. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور زکوٰۃ لے لی. زکوٰۃ لینے والوں کا بھی مسئلہ ہے, دینے والوں کا بھی مسئلہ ہے. دینے والوں کا بھی مسئلہ ہے کہ انہیں پتہ کوئی نہیں زکوٰۃ کس کو دینی ہے. لینے والوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں بھی یا نہیں, تو وہ بھی خطرے میں آ جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ دی تو دی لیکن پوری نہیں دی, زکوٰۃ پوری نہیں دی, زکوٰۃ کی رقم اس کے اصلی مال میں رہ گئی تو یہ مال بھی خطرے میں آ گیا. بہتر صورت زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ ہوتی ہے اگر وہ یک مشت اکٹھی رقم زکوٰۃ کی نہیں دے سکتے, لاکھوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں, تو اسے ہر ماہ پہلے سے دینا شروع کر دے. اور جب ہر ماہ پہلے سے دینا شروع کرے گا طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا, نکالنا بھی آسان ہوگا. اور پھر جو زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ وہ تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے, یکم رمضان, 15 شعبان, یکم رمضان, کوئی ایک اسلامی تاریخ اپنے تمام ٹوٹل معاملات کا حساب کرنے کے لیے مقرر کر لے. اب اس نے مثال کے طور پہ وہ تاریخ مقرر کر لی 15 شعبان, 3-4 دن پہلے سب ملا کر سارا حساب 15 شعبان کو اپنا مکمل کر لیا کہ آج اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے 2 کروڑ روپے, 1 کروڑ روپے نکلتی ہے, اور الحمدللہ اس نے ماہانہ اتنی زکوٰۃ نکال دی, پیچھے 3 لاکھ رہ گئی, اب وہ جلدی سے دے دے. یہ ہے معاملہ آسان ترین. اور اگر بالخدا اگر بالفرض اس نے زکوٰۃ نکال دی تھی 1.5 کروڑ روپے, بنتی تھی 1 کروڑ, کوئی بات نہیں, اس 50 کو آئندہ سال پہ مینج کر سکتا ہے, آئندہ سال پر مینج کر سکتا ہے. لیکن یہ صورت اچھی نہیں ہے کہ سال پورا ہو گیا اور سال ایک اور بھی گزر گیا اور اس کی زکوٰۃ ہی پوری نہیں نکلی اب تک, اور یہ اپنے زکوٰۃ کے فریضے سے فارغ نہیں ہوا. یہ خطرے کی چیز ہے. ہاں, ایک ساتھ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا, اکٹھی نکالنا مشکل ہے, طبیعت پر بوجھ ہے, ماہانہ کے لحاظ سے نکال لے اور پھر جو تاریخ کی تاریخ آئے زکوٰۃ کی اس میں اپنے تمام مالیات کے ٹوٹل کر لے, سونا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, نقدی کتنی ہے, تجارت کا سامان کتنا ہے, ان تمام چیزوں کا, چاہے وہ رقم 1 دن پہلے آئے اس کو بھی شامل کر لے, 3 دن پہلے آئے اسے بھی شامل کر لے. ہاں, 1 دن پہلے اگر اپنی بیٹی کی شادی میں, بیٹے کی شادی میں یا دیگر اپنی ضروریات میں خرچ کر لیا اس پہ زکوٰۃ نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس تاریخ کو دیکھ لے کہ آج اس کے پاس مالیت کی حیثیت سے وہ کہاں کھڑا ہے, اور اس کو ٹوٹل کر کے, اب اس نے ماشاءاللہ پورا سال پہلے سے زکوٰۃ دیتا رہا, اب اتنی تھوڑی سی رہ گئی, اور اس کو جلدی نکال, کیا ہوگا؟ اللہ اس کے مال کو محفوظ فرما دیں. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر قلعوں میں محفوظ کر لو. اور اب اگر کوئی ازمائش آ گئی تو یقین جانیے یہ مال کے سلسلے میں زحمت نہیں ہے, رحمت ہی رحمت. یہ مال کے سلسلے میں جیسے آدمی کا بدن گناہوں سے پاک ہو اور پھر بیمار ہو جائے इसमें कोई शक नहीं कि ये इसके लिए रहमत ही रहमत है। हां अगर गुनाह है जिस्म पे, गुनाहों का जंग है, और फिर अगर कोई बीमारी आ गई तो हो सकता है ये सफाई हो रही हो सकता है ये सफाई हो रही हो, ये गुनाहों की माफी हो रही हो। लेकिन बदन गुनाहों से पाक है और फिर बदन पर कोई अजमाइश और बीमारी आ गई, ये 100% रहमत ही रहमत है। इसी तरह अगर माल भी गुनाह से पाक है और फिर उस पर कोई अजमाइश आ गई, 100% वो रहमत ही रहमत है। और इस किस्म की अजमाइश अल्लाह के वलियों पर भी आती है, अल्लाह के नेक बंदों पर भी आती है, अल्लाह वालों पर भी आती है, औलिया अल्लाह पर भी आती है, पैगंबर भी बीमार हुए उन पर भी आजमाइशें आई, इसमें तो कोई वो नहीं है, वो फिर रहमत ही रहमत है और दराजात की बुलंदी का जरिया ही है। तो वो चीज खतरे की है कि माल में गुनाह रह गया, अल्लाह का हुक्म रह गया और अल्लाह का हुक्म उसमें माल में पूरा नहीं हुआ, फिर जो आफत आई वो आफत मुसीबत बन के आई, वो जहमत बन के आई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कर सकते थे कि जिस माल में ज़कात की रकम मिल गई हलाकत में आ गया, वो हलाकत में आ गया कि ज़कात लेने वाला मुस्तहिक नहीं था और उसने ले ली, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, कभी नहीं बच सकता। जब अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया तो कैसे बच सकता है, कैसे बच सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि ज़कात उसने निकाली नहीं या निकाली और पूरी नहीं निकाली, तब भी उसका माल हलाकत में आ गया, तब भी उसका माल खतरे में आ गया। तो ज़कात के मामले में यह बात पेश नजर रहे कि ज़कात निकले और पूरे तौर पर निकले और सही तौर पे उसका इस्तेमाल हो। ज़कात उस किस्म के माल पे फर्ज होती है जो हकीकतन बढ़ने वाला हो, जैसे तिजारत से माल बढ़ता है, या हुक्मन बढ़ने वाला हो, अगरचे हकीकतन नहीं मरता लेकिन अगर मालिक उसको बढ़ाना चाहे तो उस पे कादिर है। रुपया, सोना, चांदी, हाँ इन चीजों पर ज़कात होती है, सोने पे होती है, चांदी भी होती है, नकदी भी होती है। सोना किसी भी हाल में रखा हो, बेटे के लिए रखा है, दिया नहीं है, मालिक अब्बा ही है, या बीवी मालिक है, बीवी पर होगा, रखा हुआ है, इस्तेमाल भी नहीं कर रही या इस्तेमाल कर रही है, या तिजारत के लिए रखा है, इन सब पे ज़कात। सोना जिस हाल में भी है उस पे ज़कात है। अच्छा ये जो मशहूर है 7.5 तोला चांद सोना होगा तब ज़कात होगी, ये 7.5 तोला सोना उस वक्त है जब एक भी रुपया ना हो, जब चांदी बिल्कुल ना हो, जब तिजारत का सामान बिल्कुल ना हो, जिस जमाने के अंदर दनानीर चला करते थे, सोने के सिक्के चलते थे। लेकिन अगर रुपया भी है और 1 तोला सोना भी है, या थोड़ा सा तिजारत का सामान भी है और 1 तोला 1.5 तोला आपके पास सोना भी है, ज़कात फर्ज हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर या इन तीनों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी बनती है, ज़कात फर्ज हो जाएगी। शरीयत की नजर में ये मालदार है, ये शरीयत की नजर में मालदार है। हाँ अगर रुपया एक भी नहीं, तिजारत का सामान बिल्कुल नहीं, चांदी बिल्कुल नहीं, फिर है 7.5 तोला सोना। लेकिन अगर दो चीजें मिक्स हैं, तीन चीजें मिक्स हैं, कुछ पैसा है, कुछ चांदी है, कुछ पैसा है, कुछ सोना है, तो फिर जो निसाब होगा ज़कात का वो 7.5 तोला सोना नहीं, वो फिर 52.5 तोला चांदी होगी। फिर देखा जाएगा अगर 52.5 तोला चांदी है उस पर ज़कात फर्ज है। बच्चियों के पास शादी से पहले भी इतना सोना होता ही है और आजकल तो बच्चों के पास इतनी जेब खर्ची इकट्ठी हो ही जाती है जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी बनती है, और इतना सोना तो उनके पास। हाँ नाबालिग है फिर नहीं, बुलूगत शर्त है, बालिग होने के बाद अगर उसके पास इतना है तो फिर उस पर ज़कात फर्ज है, और वो ज़कात सोना है, चांदी है, नकदी है, तिजारत का सामान। तिजारत के सामान में ये बात बहुत बुनियादी है कि वो चीज बेचने के लिए ली हो और बेचने के लिए रखी हुई। एक प्लाट मिल गया बच्ची को, बच्ची बालिग है, उसको अब्बा ने एक प्लाट दे दिया और वो रखा हुआ है, उस पर ज़कात नहीं, इसलिए कि वो प्लाट तिजारत के लिए उसने नहीं लिया, अब्बा ने विरासत में दिया है, हदीये में दिया है, तोहफे में दिया है। दो प्लाट दे दिए अब्बा ने, और लेकिन वो इसने खरीदा नहीं, खरीदा नहीं, बेचने के लिए लिया नहीं, इस पे नहीं है। लेकिन एक आदमी ने प्लाट लिया या गाड़ी ही ले ली, बेचने के लिए ली, बेचने के लिए रखी हुई है, उस पे फर्ज है। हाँ, अगर बेचने के लिए ली थी फिर इरादा हो गया इस पे बेटे का घर बना दूंगा, इस पर बेटी का घर बना दूंगा, या इस पर खुद घर बना दूंगा, अब इस प्लाट पे ज़कात नहीं। तो तिजारत का सामान में दो बुनियादी शर्तें हैं, बेचने के लिए लिया हो, बेचने के लिए रखा हुआ हो, बेचने के लिए लिया हो, बेचने के लिए रखा हो। अब उसमें फैक्ट्रियों में खाम माल होता है या इसी तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर बनाया हुआ तिजारती सामान होता है या फैक्ट्रियों और कारखानों के अंदर जिसे कहें कि मसनूआत तैयार होती हैं, उन सब भी उस तिजारत के लिए लिया है, तिजारत के लिए रखा है, मशीनरी नहीं, इसलिए कि वो तिजारत के लिए नहीं, वो तो चीजें बनाने के लिए रखी हुई है। फैक्ट्री के ऊपर नहीं है, इसलिए कि वो फैक्ट्री तो बेचने के लिए नहीं रखी हुई ना, उसके अंदर जो चीजें हैं वो बेचने के लिए रखी हुई है। फैक्ट्री पे नहीं है, कारखाने पे नहीं है, मशीनरी पे नहीं है, घर पे नहीं है, इस्तेमाल की गाड़ी पर नहीं है, चाहे 5 गाड़ियां रखी हुई हैं इस्तेमाल की हैं, उन सब पे ज़कात नहीं है। सोना है, चांदी है, नकदी है, तिजारत का सामान है, तिजारत का सामान वो जो बेचने के लिए लिया, बेचने के लिए रखा हुआ है, तो इन पे ज़कात है। और इनमें बड़ी ही खुश दिली के साथ, बड़ी ही अपनी सआदत समझते हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं आज ज़कात जैसी इबादत करने के काबिल हुआ हूं, बड़े शुक्र की कैफियत के साथ और बड़ी खुश दिली के साथ कि अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इबादत ज़कात जैसी इबादत के लायक हुआ हूं और अल्लाह ने मुझे इसकी तौफ। जैसे एक आदमी हज करता है तो कितना खुश होता है, हज कर लिया, वाह वाह कितना खुश होता है, वो भी अपने अंदर एक जज्बात रखता है कि हज की तौफीक हो गई। अरे भाई, तो ज़कात भी तो हज की तरह एक रुकन है, अंदर खुशी हो कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी इबादत की तौफीक नसीब फरमाई। बताइए कितनी दुआएं करता है आदमी, हज पे चला जाऊं, हज पे चला जाऊं, हज पे चला जाऊं, बल्कि दुआ करता है नफली हज कर लूं, क्या नफली हज कर लूं, नफल उमरा कर लूं, दुआएं करता रहता है, कुड़ता रहता है। तो कितनी अंदर खुशी होती है और लोग भी कहते हैं कितना खुश नसीब है। तो ज़कात भी बहुत बड़ी इबादत है, अंदर खुशी हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सआदत बख्शी है, मुझे इस काबिल बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हुई कि मैं इस काबिल हुआ कि इतनी बड़ी इबादत की मुझे तौफीक मिल रही है। इस खुश दिली के साथ और शुक्र के कैफियत के साथ जब आदमी यह इबादत करता है उसकी बरकतें मिलती, उसकी बरकतें मिलती हैं, उसकी बरकतें और सवरात नसीब होते हैं। तो मैंने अर्ज किया था इंशाल्लाह वो कागज भी आप हजरात को दे दूंगा, तो उसमें पूरा ज़कात के इंशाल्लाह निकालने का तरीका भी है, इसके मसाइल भी बड़े अहम है। अल्लाह अमल की तौफीक।